नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इथियोपिया एक परिवार के सदस्य के रूप में साथ खड़े हैं और अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समानतापूर्ण और अधिक शांतिपूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक दक्षिण अपना भविष्य स्वयं लिख रहा है।
is writing its own destiny and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone.
प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली ने सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को भारत इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में अदिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। श्री मोदी ने यह पुरस्कार दोनों देशों के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है।
यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की सफल यात्रा के बाद ओमान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। भारत और ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने और सदियों पुराने व्यक्तिगत संबंधों पर जश्न मना रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं और इससे निपटने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। रणनीतिक रूप से भी दोनों देश एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ओमान के मस्कत में हमारे संवाददाता से बातचीत में भारत के राजदूत वी श्रीनिवास ने कहा कि दोनों देश सहिष्णु हैं और सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान करते हैं। लोकसभा में सस्टेनेबल हॉर्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025 विधेयक विचार विमर्श और पारित करने के लिए रखा गया है। इस विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण हेतु परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर है और सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने, देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए जीवाश्म ईंधन और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध किया और परमाणु उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं को दायित्व से छूट देने सहित विधेयक में शामिल कई नए प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की। भारत ने आज बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्ला को बुलाकर बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त को कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों के बारे में सूचित किया गया है जिन्होंने ढाका में भारतीय दूतावास के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की घोषणा की। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के संबंध में चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करता है। मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का पक्षधर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने और जाने वाले सभी तेल टैंकरों की पूर्ण अव्यापक नाकाबंदी का आदेश दिया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। भारतीय फिल्म होमबाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है। नीरज घेवान के निर्देशन में बनी यह फिल्म इस श्रेणी के लिए नामित 15 फिल्मों में शामिल है। पुरस्कार के विजेता की घोषणा आगामी 15 मार्च को होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।